तो आप सबका स्वागत है शनिवार को सूरत में जाह्नवी प्रिया और प्रकाशानंद के निवास स्थान पे आध्यात्मिक आनंद के रसास्वादन के लिए आप पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक श्लोक भगवद गीता का अध्ययन करने का अभ्यास करेंगे, तो इसलिए पहले उसके लिए ये समझ लेना चाहिए कि भगवद गीता की शिक्षा हमारे अंदर परमनेंटशिप अथवा नित्यता का निर्देश करती है कि हम नित्य हैं। हमको डर इसलिए लगता है कि पता नहीं छोटा समय हमारे पास है, इतना सारे काम है, हम कैसे करेंगे। ये हमारी समस्या है इस दुनिया में कि समय थोड़ा है और काम बहुत पूरे ज्यादा है, कम कैसे करेंगे। तो पहले तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम नित्य हो। तो एक बहुत बड़ा आश्वासन मिलता है कि हमें ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मेरे पास समय न हो। और दूसरा भगवद गीता का डायरेक्ट अथवा बिल्कुल सीधा संदेश है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता, तुम्हारा कभी साथ न छोड़ने वाला साथी, तुम्हारी सहायता के लिए हर वक्त तैयार हूं। ये दूसरा भगवान का सीधा सा उपदेश है कि मैं परमात्मा के रूप में तुम सबके हृदय में रहता हूं और तुम अकेले नहीं हो। और तीसरा उद्देश्य है कि तुम जिस काम के लिए बनाए गए हो वो काम तुम पूर्ण शक्ति के साथ करो, और वही उसी काम के द्वारा तुम मेरी पूजा कर सकते हो। ये तीन सिद्धांत भगवद गीता की शिक्षा के हैं। एक तो आप नित्य हो और आप अकेले नहीं हो, इसको सामान्य भाषा में ऐसे समझ लो कि आपका जॉब परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है, आपको रिस्क नहीं है, और आपका पार्टनरशिप अथवा आपका जो काम है उसमें आपकी बैकिंग सबसे दुनिया के शक्तिशाली व्यक्ति की आपके बैकिंग पे है। जैसे काम में आदमी चाहिए, भाई मुझे बैकिंग किसकी है, मिनिस्टर की है कि प्राइम मिनिस्टर की है, तो यहां तो जगन्नाथ भगवान कहते हैं मैं आपका आपके पीछे हूं। तो दुनिया में आदमी तभी सफल होता है जब बैकिंग अच्छी हो और स्वयं को पता हो कि मेरे पास समय है और मैं ये काम कर सकता हूं। तब फिर उसमें जितनी शक्ति होती है, जितनी उसमें पोटेंशियल होता है, जितना उसके में कैपेबिलिटी होती है, जितनी उसमें क्षमता होती है, उस क्षमता से भी ज्यादा काम करने का प्रयास करता है। तो तो ये तीन गीता की शिक्षाएं जो है, ये आपको कैसे लगता है कि आपके जीवन में हर समय काम आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? कोई भी आदमी किसी भी, अब अर्जुन को भगवान तो कह रहे हैं युद्ध करो, अर्जुन कह रहा है नहीं मैं जाके जंगल में तपस्या करना चाहता हूं, भीख मांग के जीना चाहता हूं, और भगवान कहते हैं नहीं तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने धर्म का पालन करो। तो क्या भगवद गीता काम से भगाना सिखाती है? ये शिक्षा गीता की सीधी सी है, तो काम से भगाना नहीं सिखाती है। काम को बुद्धिमानी से, अच्छी तरह से, सफलता के रास्ते के ऊपर कैसा किया जाए, इसके लिए शिक्षा देती है। असल में भगवद गीता की शिक्षा के अभाव के कारण भारतवर्ष के लोग कायर हो गए हैं, कायर हो गए। वीरता का बहुत ह्रास हुआ है, हानि हुई है। तो जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे थे, आप भी पढ़िए, उसका अभ्यास कीजिए। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्मयम सुसुकम कर्तुम अव्ययम सुसुखम। एक होता है सुख, ये होता है सुसुख। तो जो बच्ची का प्रश्न था 16 साल की कि हम सुख चाहते हैं, तो सुख प्राप्त करें, और दूसरा उसने कहा कि हम एंजॉय करें, या तो आप जो ट्राई कर रही हो सुख को प्राप्त करने की, और भगवान कह रहे हैं तुम्हारे को सुसुख देना चाहता हूं, तो आपको सुख चाहिए कि सुसुख चाहिए? सुख या सुसुख का मतलब है सुप्रीम सुख, जैसे सुंदर सुसुंदर, चारू सुचारू। सु लगता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो आपको सुख चाहिए कि सुसुख चाहिए? अब दोनों में अंतर बता रहा हूं। सुख जो है उसके अंदर दुख समाया हुआ है। कौन से सुख में? ये संस प्रसजा भोगा दुख योन्य एवते। जो सुख इंद्रियों के विषयों से प्राप्त होता है उसके गर्भ में दुख जन्म लेता है। जो सुख इंद्रियों के स्पर्श से प्राप्त होता है उसी के गर्भ में दुख जन्म लेता है। दुख कहां जन्म लेता है? इंद्रियों के सुख के अंदर दुख जन्म लेता है। और दूसरा उसके पीछे क्या कहा है? आद्य अंत वंत, और उस सुख का आद होता है और अंत होता है, और सुसुख का अंत नहीं होता, वो नित्य है। तो अब कौन सा सुख हमको चाहिए? इसमें सिर्फ बुद्धिमानी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति सुसुख जो चाहिए, सुसुख चाहिए। और अव्यय, जो कभी नाश नहीं होता। व्यय का कहते हैं खर्चे को, और अव्यय कहते हैं कितना भी खर्चा करो फिर भी कभी खूटे नहीं, कम नहीं हो। तो ये जो सुसुख है ये अव्यय है, और जो सुख है वो आद अंतवंत है। तो हमको सुख चाहिए कि सुसुख चाहिए? विद्या चाहिए कि राज विद्या चाहिए? विद्या और राज विद्या, विद्याओं का राजा। अब ये बार कंपेरियन हमारे लिए दिए, इसमें बहुत से लोग सुख में खुश हैं, बहुत कम लोग हैं जो सुसुख का इच्छा करते हैं कि ऐसा सुख हो जो कभी खत्म ना हो। आपका क्या विचार है? आपको सुख कैसा चाहिए? जो खत्म हो वो चाहिए कि ना खत्म हो चाहिए? और आपको जो सुख मिले हैं वो खत्म हुए कि नहीं हुए? हाँ, सब हो गए कि नहीं हो गए? तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? जो सुख इस संसार में हम ढूंढ रहे हैं उसी के गर्भ में दुख जन्म लेता है। और फिर उसी श्लोक में क्या कहा है, आद्य अंतवन तेषाम न रमन्ते बुद्धा। बुद्धा का मतलब बुद्धिमान, बुद्धा मतलब गौतम बुद्ध। तेषाम न रमन्ते, रमन्ते का मतलब, रमन शब्द किसके लिए यूज करते हैं आप लोग, कौन करता है, बच्चे। रमन्ते का मतलब बच्चों का खेल। तो जो बुद्धिमान है ऐसे बच्चों के खेल जैसे सुख में नहीं रमते। कैसे लगता है ये सिद्धांत, कैसा लगता है कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे, जैसे आपको मैं कहूं कि आप भगवान ने संपन्न हो, घर है, परिवार है, लेकिन लोग रोड के ऊपर अभी देसी शराब की बोतल लेके गली में पी रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम बहुत सुखी हैं, आप क्या कहोगे उसको, आपके विचार में उसके लिए क्या राय है कि अपना नाश कर रहे हैं, ऐसे कहोगे ना, देखो कहां गरीब, देखो बच्चे इनके घर में दुखी होंगे, ये यहां पड़े हुए हैं, ऐसे कहोगे कि नहीं कहोगे। लेकिन उनके लिए वो सुख है कि नहीं, तो उनका सुख है उसका स्तर दूसरा है, आपके सुख का स्तर दूसरा है। तो इस दुनिया के अंदर ऐसे अलग अलग स्तर के लोग हैं। एक लोग जो होते हैं वो तमोगुण में होते हैं, तमोगुण तो और ऊपर है, एक लोग होते हैं पशु के स्तर के ऊपर होते हैं। अभी पशु के स्तर के ऊपर लोग, आपको डर नहीं लगना चाहिए, पशु के स्तर के ऊपर लोग आपको देखने तो किसी भी पार्क में चले जाओ और लाग एक चक्कर लगाओ जाके शाम के समय, आपको जगह जगह पे वो जैसे रोड के ऊपर ना कुत्ता कुतियां होते हैं ऐसे पड़े हुए दिखाई देंगे, जाके देख लो, ये सच है कि झूठ है मैं आपसे कहता हूं। और वो अपने आप को खुश समझते हैं कि हम दुनिया में सबसे परे हैं और ऐसा सुख ले रहे हैं, और दुनिया उसको देखने वाले क्या कहोगे, आप क्या कहोगे बताओ, आपका उसके ऊपर कमेंट क्या होगा बताइए ना, कितने बेशरम है कितना अच्छा कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट है। और उनको उसमें इतना सुख मिलता है, उनको परवाह नहीं है कौन आगे से जा रहा है। असल में सीसी कैमरा लगी हुई और उन्हीं को वो दिखाई जाए तो उनको भी शर्म आएगी, उनको भी शर्म आएगी वो देखकर, लेकिन उस वक्त उनको पता नहीं लगता है। लेकिन ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहां एक बार कहां थे हम, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैं यशोमती बापू के साथ जा रहा था तो वो टायर बना रहे थे, हमने बोला चलो ये पार्क में चक्कर लगाते हैं, बापू बोला थे कहां जंगल में आ गए अहमदाबाद के शहर के बीच में बड़े से बड़े पार्क के अंदर कहीं से गुजर नहीं सकते। वो ऐसा सीन है, आपको कहता हूं, बिहार में अभी थोड़े दिन हम गए थे बिहार में कार्तिक के एंड दिनों में। अब ठीक है, गांव का माहौल है, बाथरूम किसी के घर में नहीं है, मतलब टॉयलेट किसी के घर में नहीं है, जो रोड मेन रोड जो होता है ना उसमें अगर आप सुबह 7 और 8 के बीच में चलोगे तो चल नहीं सकते, आप पांव कहां रखोगे, आपको जगह नहीं है। यानी मैं ये तो आंखों देखी बात कर रहा हूं कि जगह जगह पे विस्टा ऐसे कि आप उधर चल नहीं सकते हो, अब उधर आप चलना कितना मुश्किल है। और ये सच्ची आंखों देखी घटना कह रहा हूं, ऐसे इन पार्कों में उस विस्टा से भी ज्यादा मुश्किल चलना हो गया। हम परसों चलने गए थे अगरसिंह पार्क, महाराज अगरसिंह के पार्क में, अब नहीं चलें थक जाएं तो बेंच खाली नहीं है उसके ऊपर बैठे, अगर सारे पागल पशु बैठे। अब बताइए कि ये कौन है, ये भी अपने आप को सुख भोगने वाले मानते हैं कि नहीं मानते, और हैं किसके, हमारे बच्चे हैं हमको मालूम नहीं है, बच्चे तो हमारे ही हैं ना, किसी न किसी के, हमारे मतलब किसी न किसी इंसान के ही बच्चे हैं और हमारे ही बच्चे हैं, तो ये स्थिति कहां से आई। क्या इसको एंजॉयमेंट कहेंगे? क्यों बेटी, हाँ आपका क्या विचार है? ये एंजॉयमेंट है जिसको देखकर दुखी लोग दुखी हों, समाज दुखी हो, कोई एंजॉयमेंट है क्या? तो एक पशु के स्तर के लोग होते हैं, एक होते हैं तमोगुण के लोग, जिनका स्वभाव, तमोगुण का अर्थ क्या होता है? अंधकार में, तम कहते हैं अंधकार को, जो आदमी अंधकार में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, विचारों को पता ही नहीं है कि दुनिया कैसी है, वो आलसी लोग होते हैं। और ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, ये भिखारी लोग जितने हैं ना, सब तमोगुण के आलसी हैं, कुछ नहीं करेंगे, गली गली में पड़े होते हैं। कुछ लोग रजोगुण में होते हैं, जो लोभी होते हैं, और बहुत कम लोग सतोगुण में होते हैं, जो शांत होते हैं अपने स्वभाव में और जिज्ञासु होते हैं ज्ञान पर प्राप्त करने की, और सुख, स्थाई सुख की खोज करते हैं। अब पहले हमको देखना चाहिए कि हम कौन से स्तर पे हैं, पशु के स्तर पे हैं कि तमोगुण में हैं, कि रजोगुण में हैं, कि सतोगुण में। वैसे ये कृष्ण भावना अमृत संघशीला प्रभुपाद ने जो स्थापित किया ना, उसने घोषणा की थी कि समाज को सतोगुण में लाने का मेरा चेष्टा और उद्देश्य है। उन्होंने ये कहा था समाज, और ये अमेरिका में कहा था कि यहां के लोग तमो और रजोगुण में लिप्त हैं, अज्ञान, अंधकार और लोभ में इतने लिप्त हैं कि इनके अपना हित क्या है ये भी नहीं जानते हैं। और जिस अमेरिका को हम अपना आइडियल मानते हैं कि वहां जाके हम सुखी हो जाएंगे, ये आज से 50 साल प्रभुपाद जी ने उतरते ही पहले देखा और कहा कि मैं जो संस्था बनाने जा रहा हूं, ये संस्था के एक समाज बनाने जा रहा हूं, वो समाज सतोगुण के ऊपर स्थिर होना चाहिए, जिसमें दो सतोगुण की दो पहचान है, ज्ञान की जिज्ञासा और सुख की खोज, सुसुख, अच्छे सुख की खोज। तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं जो यहां आ रहे हैं कि ये उद्देश्य इस संस्था का, जिसको आप, जो आपकी संस्था है, आपके लिए है, तो क्या हम अपने समाज को सतोगुण में देखना चाहते हैं या तमो रजोगुण अथवा पशु के स्तर पर देखना चाहते हैं? ये आपका क्या विचार है? अब आप कहें कि हम कौन से स्तर पे रहना पसंद करेंगे। सतम सुखम, सतो सुखम, क्या है, क्या श्लोक कैसे है? सत्वम सुखम संजायते रज कर्मणि भारत। तो ये अब ये है कि संस्था का उद्देश्य है कि समाज के समझदार लोगों को सत्वगुण में लाया जाए। तो अगर अब ये च्वाइस आपकी है, क्योंकि जो कोई भी वॉलेंट्री, कोई भी कहा, कोई भी, बेसिकली हम कहते हैं जो ये कृष्ण भावना भावित समाज का निर्माण है, ये वॉलेंट्री है, ये स्वइच्छा से है। अब आपको हमने च्वाइस दी है कि आपको क्या चाहिए, ये आपको हमने दर्शन कराया समाज में ये चल रहा है, अब आपको कहां खड़ा होना है ये बताइए। अब च्वाइस आपको करनी, राज विद्या, ये जो आंदोलन की स्थापना है उसका उद्देश्य है राज विद्या, जो सारी विद्याओं का राजा है। तो फिर विद्या क्या है? कौन सा एक एक पहले क्या स्कूल के बाहर लिखा होता था, कम टू लर्न गो टू सर्व, ये स्लोगन देखा था कभी स्कूलों के बाहर लिखा होता था, कम टू लर्न गो टू सर्व, आइए शिक्षा ग्रहण कीजिए और जाकर सेवा कीजिए। अब ये कहीं स्लोगन मिलता है किसी स्कूल के ऊपर? आइए जेब खाली कीजिए और वापस जाके लूटिए, ये आज की एजुकेशन का स्लोगन है, आइए जेब खाली कीजिए और लौट के जाके लूटिए। क्यों भाई, ठीक लग रहा है कि नहीं? ये पुराना, ये भी किसी, ये स्लोगन किसी ने तो लिखा था ना कि आइए शिक्षा ग्रहण कीजिए और जाके सेवा कीजिए। ये आपके पूर्वजों का शास्त्र से ग्रहण की हुई शिक्षा का स्लोगन था। आओ शिक्षा, तो शिक्षा क्या है? जो सेवा करना सिखाए। ये नहीं होता ज्ञान प्राप्त कीजिए, ऐसा नहीं कि बाहर जाके तुम ज्ञान पर प्राप्त करके जाओ, आओ सीखो और सेवा के लिए जाओ। ये थी आपके पूर्वजों की पुरानी शिक्षा का सरल एक सूत्र में सारे शास्त्रों का सार, एक सूत्र में सारे शास्त्रों का सार उन बुजुर्गों का था जो हमारे पूर्वज थे, आओ सीखो और सेवा करने जाओ। अब हम आपसे पूछते हैं कि आजकल के समाज में हमारे पढ़े लिखे बच्चे भगवान की सेवा को छोड़ो अपने मां बाप की सेवा करते हैं? देखिए, आप अपने लिए सोचो कि आप कर रहे हो क्या, दूसरों को मत देखो।
हमको उनकी सेवा करनी पड़ती है, उल्टा हमको उनकी सेवा करनी पड़ती है, उल्टा हो रहा
है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट है कि नहीं? आदमी जब नशे में होता है ना, तब उसको पता नहीं लगता है कि चारों ओर क्या हो रहा है। जब नशा उतरता है तब पता लगता है। इस वक्त एक भौतिकवाद का नशा पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है और नशे के अंदर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, और गलत को सही मान रहे हैं और सही को गलत मान रहे हैं। ये एक स्थिति ऐसी पूरे देश की है, एक की नहीं है, सबकी है। जैसे मैं आपको थोड़ा उदाहरण, सिंपल उदाहरण दूं, ऑफिसर कोई ईमानदार आ जाए और नेम से काम करे तो आपका कमेंट क्या होगा? बेवकूफ है। और हाँ हाँ, एक न खाता है न खाने देता है और परेशान कर दिया है, और ट्रांसफर करा दिया जाए, और कहां से महात्मा, नहीं महात्मा गांधी उसको कहते हैं जो महात्मा गांधी के नोट को पसंद करता है। और कोई बदमाश पहले नंबर का हो, कहे कि शराब की बोतल भी लाओ, पैसे भी दो, जो चाहिए वो करो, क्या लोग मिलूंगा, क्या राय उसके बारे में? कोऑपरेटिव है, प्रैक्टिकल है। अब मुझे बताइए कि ये अब सही को हम पसंद कर रहे हैं कि गलत को पसंद कर रहे हैं? अब देखिए, ये हमारा, ये हमारी कसौटी जो बनी हुई है ना, वो हमारे हाथ में गलत कसौटी दी गई है, उसके ऊपर घिसते हैं सोना और घिसते हैं पीतल, दिखता है सोना। कसौटी गलत है, समाज में ही गलत दिख रहा है कि नहीं? गलत आदमी को सही कह रहे हैं, सही को गलत कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? ये हमारे एग्जैक्टली सब कामों में ऐसा ही हो गया। समझते हैं कि सही है ईमानदार, लेकिन फिर भी उसको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि नशे में है। तो क्या हमको समाज का सिस्टम बदलने की जरूरत है कि ऐसे चलने दें, ऐसे चलने दिया जाए कि इसको बदला जाए? नहीं, खुद बदलना तो शुरू अपने से करने से पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा ठीक है कि कुछ बदलने की आवश्यकता है? बस ये अगर सिर्फ समझ में आ जाए ना कि हमको सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। हमने अपनी पूजा भी वो ऐसी बना ली है जो ऐसे प्रकार के लोगों को प्रमोट करती, हमने अपना धर्म को भी उसी ढंग में ढाल दिया। क्योंकि आदमी की फिर तो प्रक्रिया हर उसी सिस्टम में चलेगी जो सिस्टम उसने दिमाग में सेट करके रखा है। तो इसलिए कल परसों जो चर्चा की, वास्तविक क्या शब्द था, नहीं वास्तविक पूजा शब्द था, खत्म हो गई। मंदिर बहुत हैं, सत्संग बहुत हैं, साधुओं की भरमार है, टीवी के हर चैनल में एक न एक बाबा बोलता है, लेकिन लोगों में एक पैसे का भी सुधार नहीं आ रहा है। ये सच है कि झूठ है? कथा कराने के लिए, महात्मा को बुलाने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, उसका ये उसका रेट है। तो कथा सुनने वाला क्या उसके बाद बिल्कुल साधु बनेगा कि 25 लाख से 50 लाख कमाने का काम करेगा, ये बताओ ना। ये कहने का तात्पर्य कि हमने सारे समाज के अंदर पूजा की पद्धति को और भागवत के महात्म में लिखा है, ऐसे पांप शो वाली भागवत का कोई फल नहीं है, ये रजोगुण का सत्संग है। इसका लिखा रजोगुण का सत्संग है, और ये रजोगुण का पूजा पाठ चारों ओर हो रहा है, और रजोगुण लोभ पैदा करता है और लोभ बढ़ता जा रहा है। बस कथा करने वाले को भी लोभ है और सुनने वाले का लोभ उससे ज्यादा बढ़ता है, इसलिए किसी में कोई चरित्र की परिवर्तन चरित्र में आ नहीं रहा है समाज के अंदर। ये सच है कि झूठ है? इतने सारे मंदिर, इतने सारे, आए दिन मंदिर खुल रहा है, आए दिन कोई ना कोई महात्मा का कथा चल रहा है, लेकिन लोगों के वृत्ति में एक पैसे का फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी सारा जिन इक्वेशन पहले ही गलत हमने रखी, 2 और 2 3 लिखा है, फिर सारी मैथमेटिक्स करो, जवाब तो गलत ही आएगा ना। तो हमने पहली सिंपल इक्वेशन को हमने टेढ़ा कर गलत लिख दिया है, 2 और 2 3 लिखा है, फिर आप कितना भी राइट उसको मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड करो, उसको कुछ भी करो, लेकिन आंसर क्या आएगा? रॉन्ग आएगा कि नहीं आएगा? दलीप कहां गया? भागता जा रहा है, अंदर है। एक इन्वेजिलेटर आया था स्कूल में, इंस्पेक्टर स्कूल का, उसने आके एक प्रश्न पूछा स्टूडेंट से कि सूरत से बड़ौदा अगर 120 किलोमीटर है तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। सूरत से बड़ौदा कितना? इतना ही है, 120 प्लीज है, 160 है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब बच्चे बेचारे बड़े परेशान, मैथमेटिक ये बड़ी अजीब थी, तो कौन इस उत्तर दे? एक ने ऐसे करके हाथ ऊपर किया आकर, बेटा बोलो। बोला फाल्टी 8 ईयर सर, उसकी उम्र थी 48 साल। बड़ा खुश हो गया कि दिस इज वेरी गुड स्टूडेंट। सारी क्लास में एक को ही उत्तर आया, पूछा भाई तुमने कैसे निकाला, कौन सा फार्मूला से तुमने ये मैथमेटिक्स साल किया? बोला सर मेरा भाई जो है ना छोटा, वो आधा पागल है 24 साल का। तो मैंने सोचा कि आपका उम्र 48 होना चाहिए। तो ये गणित चल रही है अब तक, अब बताओ क्या करें। हरे कृष्ण। वैसे जो थोड़े भी बुद्धिमान लोग हैं उनको सोचना चाहिए। आजकल हमको एक ही बात समझ में आ रही है, जहां भी जाते हैं एक ही बात करते हैं। 40 से बड़ी उम्र के लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी दुनिया, कैसी दुनिया छोड़ के जाएंगे। थोड़ा सा ये विचार करना चाहिए कि हम जिस जो हमारे बड़ों ने दिन देख उनके सामने अब मुश्किल समय आया है, हमारे आने वाली पीढ़ी को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्या हम इसके लिए थोड़े भी चिंतित हैं क्या? हम इतने रेट रेस में, रेट रेस कहते हैं चूहा की दौड़, वो इतने रेट रेस में हम फास्ट चल रहे हैं कि हमको ये भूल रहे हैं कि असल में जाना कहां है। रेट रेस पता है किसको कहते हैं? वो जो ट्रेडमिल पे चलते हैं ना घर में, भैया एक घंटा चलाऊं कहां खड़े, बोले वहीं खड़ा हूं, एक घंटा चलाऊं कैलोरी जली है लेकिन कहीं पहुंचा नहीं हूं। बहुत सालों के बाद पुराना एक भक्त अमेरिकन यहां वापस आया, बोला मैं 25 साल पहले यहां आया था और अब यहां वापस आया हूं 25 साल के बाद, तो बहुत एडवांसमेंट दिख रही है लेकिन मूर्खता भी दिख रही है। ऐसे कैसे? बोला एडवांसमेंट इसलिए दिख रही है कि जरा बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी गाड़ें आ गई है। मूर्खता कैसे दिख रही है तुमको? बोला पहले लोग साइकिल के ऊपर सुबह ताजा सब्जी लेने 2 किलोमीटर जाते थे और फिर वापस आते थे, अब लोग गाड़ी में सब्जी लेकर फिर 2 किलोमीटर खड़ी खड़ी साइकिल को चलाते। जो साइकिल के चला के अगर चला जाता सब्जी लेने तो तेल का पैसा भी बचता, एक्सरसाइज भी बचती और टाइम भी बचता, वो नहीं जा रहा है, गाड़ी में सब कुछ लाके फिर बैठ के साइकिल चला रहा है। बोला मैं देखा कि एडवांसमेंट हुई है लेकिन मूर्खता भी उतनी की उतनी बड़ी है। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि ये मैं हाल आपका देख रहा हूं। और मैंने देखा एक हमारा पुराना सन्यासी प्रभुपाद के पहले शिष्यों में, पहली ग्रुप का शिष्य, एक दिन मथुरा में जा रहा था, गाड़ी में वो साइकिल चला के जा रहा था, मुकुंद गोस्वामी 14 किलोमीटर साइकिल चला के जा रहा था। उस वक्त उसकी उम्र 55 साल होगी, कम से कम 50 साल। वो लोग फिट हैं आज भी, कम से कम इतना परिश्रम, रोज 15-20 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। तो उनका ये अनुभव था कि ये काम कि आप कुछ प्रैक्टिकल बनना चाहिए, तो असल में ये प्रैक्टिकल बनने का साधन है राज विद्या। तो बात कर रहे थे विद्या, इसका मतलब विद्या सेवा सिखानी चाहिए, लेकिन ये राज विद्या है, ये राजाओं की विद्या है। तो राजा पूरे प्रजा के सुख का साधन करते थे। इसका उदाहरण देते हैं, नदी को केवल तैरने वाला आदमी ही पार कर सकता है। आपके तापी है ना, या आप एक दूसरे तरफ से, एक तरफ से दूसरे तरफ अगर आपको रोज जाना पड़े, तैर के जाने वाले कितने होंगे? नाव का पैसा भर के जाने वाले, नाव पे जाना पड़े तो भी तो रोज महंगा पड़ेगा, टाइम भी लगेगा ना। लेकिन कोई पुल बना दे, सेतु बना दे, तो गधा भी उसके ऊपर से चल के जा सकता है कि नहीं जा सकते? तो राज विद्या का मतलब राजाओं की विद्या, जो नदियों के ऊपर सेतु बना दें और गधे भी उसके ऊपर पार हो जाएं, ये राज विद्या की परिभाषा है। मतलब आपको वो विद्या दी जा रही है जिसके द्वारा आप स्वयं नहीं, बहुत से लोगों को मुश्किल रास्ते से उबार सकते हो, ये राज विद्या की परिभाषा है। कैसे लगता है ये डेफिनेशन राज विद्या की? ये राज विद्या की परिभाषा है। इसके राजा लोग ऐसे करते थे, कहां से बनाएगा सेतु? बोलता सूर्य की तरह समुद्र से पानी लेकर बादल बनाकर फिर नीचे बरसाता है ताकि हरियाली हो और सब सुख से फल सब्जियां खाएं। अब पानी सूर्य का नहीं है, राजा आप लोगों से पैसा लेता है टैक्स के रूप में और आपके लिए ही सेतु बनाता है। तो ये जो शिक्षा है, ये जो शिक्षा पद्धति है कि हम सब साथ मिलकर अब कहां दिसंबर नवंबर की एंड में मैं मॉरिशस गया था, तो उस वक्त वहां समर होती है उनका, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ये समर होता है, हमारा जब बिल्कुल विंटर शुरू होता है तब उनका समर होता है। तो जो मुझे लेने आया था उसने बोला 2 महीने से यहां बरसात नहीं हुई है, जबकि मॉरिशस ऐसा आइलैंड है जिसके लिए कहते हैं एवरी 15 मिनट्स वेदर चेंज, एक दिन में हम 3 जगह जाएंगे तो एक जगह बरसात होगी, एक जगह धूप होगी और एक जगह जो है तो एक 15 मिनट में सीजन चेंज होती है, ऐसी छोटी सी कंट्री है। तो मैं कहा ये आश्चर्य की बात है, समुद्र के घिरे हुए छोटे से टापू के अंदर पानी के बीच में प्यासे लोग, चारों ओर से पानी है लेकिन बीच में प्यासे हैं, आश्चर्य है दुनिया का। तो मेरे को याद आया ऐसे कि 74 के करीब आंध्र प्रदेश में अकाल था, बरसात नहीं हुई थी, लोग पशु भी मर रहे थे, लोग भी बहुत दुखी थे। उस वक्त अनायास प्रभुपाद जी अपने 30-40 शिष्यों के साथ हैदराबाद मंदिर का उद्घाटन करने के लिए गए, जमीन कोई मिली थी तो भक्तों ने नगर संकीर्तन किया, 2 दिन कीर्तन हुआ तो सारे प्रदेश में बरसात हुई, तो सब पेपरों में भी उस वक्त छापा के बरसात हुई। तो ऐसे भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा कि यहां बरसात हो गई, बोला भगवान ने नियम बनाया है तुम यज्ञ करो, भगवान बारिश करेगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, आपने संकीर्तन यज्ञ किया और यहां बरसात हो गई, यह सीधा सा है साधन है और इसमें कोई आश्चर्य की बात है नहीं। और उसी दिन से 18 दिन का हमारे को भगवत गीता का जो है वो एक गीता जयंती का पूरा 18 दिन का यज्ञ का वहां अनुष्ठान किया हुआ था एक प्रकार का। पहली रात को सत्संग करने शुरू किया उस दिन से बरसात हुई, 18 दिन बरसात चल रही थी, तो उन लोगों ने 18 दिन बरसात चल रही थी तो आते हुए मुझे उन्होंने कहा कुछ हमको लिखना है मंथली मैगजीन, मैंने उनको लिख के दिया आर्टिकल बाल इज इन यूर कोर्ट, अब आपके हाथ में है कि आपको सुखी रहना है तो उसका साधन यही है, भगवान ने सब व्यवस्था बना के रखी हुई है, आप उसकी तरफ उठ के हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे तो आपकी सब चीजें अपने आप होने लगेंगी, ये आपके हाथ में है। तो बात क्या कर रहे थे, तो राजा जगत का राजा भगवान है, हम सब लोग उनकी प्रार्थना जो करते हैं उसके, ये तो सीधा सा एक श्लोक बहुत सुंदर भगवद गीता का है कि यज्ञ के साथ इस सृष्टि को भगवान ने उत्पन्न किया और कहा कि इस यज्ञ को करो, ये काम दिन हुए आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगी। और ये जो आंदोलन है, ये संकीर्तन यज्ञ है, जो युग धर्म है, जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। राज विद्या राज गुह्यम, गुह्यम का राज का मतलब तो राजा मतलब किंग, गुह्यम का मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। हरे कृष्णा, कॉन्फिडेंशियल क्या समाचार है, आपको एक बार बताया था मैंने, बेटे ने बाप से पूछा, बिजनेसमैन बाप से, कि अपने बिजनेस का सीक्रेट क्या है। बाप ने कहा बेटा छत के ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से कूदो। बोला मैं टूट जा पांव टूटेगा, बोला नीचे खड़ा हूं ना आपको पकड़ लूंगा। बाप का कहना माना, बेटा ऊपर चढ़ गया, वो ऊपर से कूदा, बाप हट गया, नीचे बेटा गिरा, दोनों टांग टूटी, बाप अस्पताल ले गया, पैसा खर्च करके इलाज कराया। तब बेटे ने पूछा, पिताजी आपने मुझे पकड़ा क्यों नहीं जब मैं गिरा? बोला, आपने क्या प्रश्न पूछा था? बोला, बिजनेस की सीक्रेट। बोला, यही तो तेरे को बताना है कि बाप के ऊपर विश्वास मत करना, यही तुम्हें सिखाना कि अपने बाप के ऊपर भी विश्वास मत करना। मतलब गुहम, ये जो इस दुनिया का राजगुह ये है कि किसी के ऊपर विश्वास मत करना, ये दुनिया का राजगुह है। बाप के बेटे को शिक्षा दी, दोनों पांव तोड़वा के बोला, किसी बाप के ऊपर भी विश्वास नहीं करना। ये मैंने कविता से एक हास्य कवि की कविता सुनी थी, उसने ये कविता सुनाई थी और मारवाड़ी भाषा में सुनाई थी। मैं किसी ने नाम मेरे को नहीं आया, लेकिन मेरे को अच्छी लगी। तो किंग ऑफ सीक्रेट क्या है? आपके अंदर सबसे गुप्त चीज क्या है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं अथवा देखा नहीं जा सकता है? चेतना। चेतना ठीक है, आत्मा का लक्षण है चेतना, जो सबसे गुप्त शरीर में है। और उससे भी गुप्त एक है, पुरानी एक कहानी मैंने पढ़ी थी, ये जो चोर होते हैं ना, बड़े ईमानदार होते हैं। एक आदमी हीरे के दुकान, सूरत में हीरे का धंधा अच्छा होता है ना, यहाँ हीरे वालों को मालूम होगा, हीरे की दुकान से सामान लिया तो एक पुड़ी के अंदर 10-20 लाख रुपए का माल होगा। किसी ने देखा, उसने स्टेशन के ऊपर जाते हुए दूसरे को डील दिया कि 20 लाख का माल लिया है इसने, 1 लाख मेरा दो, ये ग्राहक तुम्हारा। उसने सौदा करके अपना पैसा ले लिया। वो ट्रेन में उसके साथ बैठा, उसी डब्बे में बैठा, अच्छी तरह से सारी रात चकास किया, हर एक चीज उसकी चकास की, बैग से लेकर तकिए तक हीरा मिला नहीं। बोला, हमारे धंधे में बेईमानी होती नहीं है, हीरा तो इसके पास होना चाहिए, उसने जो कहा है झूठ नहीं हो सकता। तो आखिर हीरा है कहां? आखिर सुबह हुई, आत्म धो के आके बैठे, उसने कहा, भाई मैं चोर हूं, मुझे किसी ने ये दिया था आपका कांटेक्ट, और मैं सब आपकी चीजें रात देख ली, मेरे को मिली नहीं, आखिर है कहां? उसने उनको निकाल के दिखाई, बोला ये पढ़िए। बोला, आप कहां रखी थी? बोला, जब तुम रात बाहर गए, मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे रखी थी। तुमने सारा मेरा घर ढूंढा, तुमने अपना तकिया तो नहीं देखा होगा ना, अब सुबह जब तुम बाहर गए तो मैं उठा के जेब में रख लिया। तो असल में सबसे गुह भगवान है, जो हृदय में बैठा है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो अंदर पड़ा है। हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं और उसने अपने आप को हमारे ही दिल में छुपा के रखा है। हम अपने अंदर देखते नहीं है, बाहर ढूंढते रहते हैं। हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, वो अंदर है। तो सबसे गुह वो भगवान है जो हमारे हृदय में हमारा मित्र है, और उससे प्रेम करना सीख जाए, ये सबसे गुह है, ये राजगुह है। और उसने रखा है कि मैं अगर सामने आ गया तो मैं मंदिरों में खड़ा हूं ना, ये लोग मेरे से मांगने ही आते, मैं सामने साक्षात आ जाऊं तो ये मेरे ही सब कुछ उतार के चले जाएं, मेरे कोई फकीर बना नहीं। इसलिए ऐसी जगह रख दिया कि इनको हाथ ही नहीं आऊंगा, बहुत बुद्धिमान लोग होंगे, वो ही केवल प्रेम से मुझे पा पाएंगे। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, पवित्र। जब तक आदमी पवित्र नहीं होगा तब तक तो आप सुनो, पवित्र का अर्थ क्या करें? आप क्या कहेंगे पवित्र को? कम से कम पहले साफ सुथरा शरीर पवित्र, ऐसे कहो, पवित्र का स्नान पानी किया, अच्छे कपड़े पहने हो। बच्चा भी कोई, आपको कैसे लगा, कोई बच्चा हो नाक बहरा हो, आंखों के यहाँ कुछ ऐसे पड़ा हो, कपड़े मेले कुचले हो और मल मूत्र में सना हो, आप उसको उठाएंगे? हाँ, नहीं उठा पाएंगे ना। ये नेचुरल है क्या? नहीं है। तो अगर अगर चमकता हुआ दमकता हुआ होगा, पवित्र होगा, तो उसको दिल से लगा लेंगे। तो ऐसे पवित्रम, पवित्र, पवित्रम उत्तमम, तम कहते हैं अंधकार को, उससे जो ऊपर उठा हुआ और साफ है जो। अब साफ कैसे करना है अपने आप को ये बताओ। शरीर को तो स्नान करके रोज साफ करना है, ये तो सभी करते हैं, लेकिन कचरा कहां पड़ा है? हृदय में कचरा हृदय में पड़ा है, और हमारा हमारा वाला भी हृदय में बैठा है। हमारा वालो हमारा मित्र भी हमारे हृदय में बैठा है, और हृदय कचरे से भरा हुआ है, उसको कैसे साफ करें? बहुत से फेस वॉश के कितने प्रोडक्ट है मार्केट में, बच्चों को बताओ बच्चे लोग, एप्रिकॉट स्क्रब से लेकर मैंने कहीं पढ़ा था, आज ही कहीं गया था, हाथ धोने अंदर पड़ा था। सब साफ करने की चीजें बहुत गंदी जगह पे रखी होती हैं। दिल साफ करने के लिए कोई क्रीम बनी है, कोई ऐसा कोई बना है प्रोडक्ट है कोई जो दिल साफ करने के लिए आया है मार्केट में? हाँ बच्ची, फेस वॉश का बहुत बड़ा प्रचलन चल पड़ा है, जो दुनिया देखती है, और दिल जो भगवान देखता है। रात हमने एक बात कही थी उसके घर पे, वरुण के घर पे, आप लोग सब थे कि नहीं थे? आप नहीं थी, दिलीप कुछ हो जाएगा। मैंने स्त्री को सज धज के किसको खुश करना चाहिए बोलो? अपने पति को। और यहां सारी स्त्रियां सज धज के बाजार जाती हैं और घर में ऐसे ही बैठी होती है, कहीं साफ कपड़ा पहनने का ही टाइम नहीं मिलता है। ये सच है कि झूठ है? हाँ, जो बिल्कुल सत्य नौजवान कह रहे हैं। ये है सत्य है कि नहीं? सज धज होके अपने पति को प्रसन्न करना चाहिए ना। और हम दुनिया के लिए तो सज धज के जाएंगे, और घर के अंदर आके वही उतारेंगे पहले। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें दिल को साफ करना चाहिए। जिसके अंदर दिल पर भगवान बैठा है, हम बाहर दुनिया को मुख तो चमका के दिखा रहे हैं, लेकिन दिल काला पड़ा है। तो हमारे को खुश उसको करना चाहिए जिसके है, न कि दुनिया को खुश करना चाहिए। हमारा जितनी प्रयास है, दुनिया कैसे क्या कहेगी? तो ये जो दिल को साफ करना है, जिसके अंदर हमारा अपना दिल पर भगवान बैठा है, उसके लिए साधन ये है जो आप रोज कर रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा गणि निर्वापणम श्री कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। ये विद्यावधु है उसका ये जीवन है, नहीं तो ये विद्या इसके बगैर विधवा है। वधु और विधवा दो शब्द होते हैं। वधु का मतलब होता है जिसका पति है, और विधवा का मतलब है जिसका पति मर गया। तो वो विद्या जिसके अंदर ये दिल साफ करने का शिक्षा नहीं दी जा रही है, वो विधवा है, वधु नहीं है। और ये जो आपको हमने कहा ये सज धजना, ये सब मॉडर्न एजुकेशन का गलत प्रभाव है। पहले माँ स्कूल बच्चे सिर्फ लड़कियों को ऐसे शिक्षा देते थे कि आपका सज धज के घर में पति के सुख के लिए होना है। ये शिक्षा खत्म हो गई, कहीं भी नहीं। बच्चों को स्कूल में ब्रह्मचार्य की शिक्षा देते थे कि बेटा जब तक तुम पढ़ते हो 20-25 साल तक, तब अपने जीवन को सुरक्षित रखना, तो आपकी उड़ान ऊपर होगी, अब तब आपकी विद्या में भी ऊपर जाओगे। कहीं शिक्षा है ये? कितने बड़े उत्तम शिक्षाएं थी जिनको हमने बिल्कुल कचरे के डब्बे में फेंक दिया, क्योंकि हमारा दिल बहुत कचरे से भरा हुआ। तो उसको साफ करने का एक ही साधन है, और जो बहुत सरलता से सबको दिया गया है, हृदय को, हृदय से मन पवित्र हरि नाम लिए, अंदर की हृदय की पवित्रता भगवत नाम से होगी, और तभी हरेक चीज, सही चीज को हम समझना शुरू करेंगे। पवित्रम, और ये हृदय पवित्र, ये भागवत का श्लोक है कि गंगा पवित्र करती है जब जाके स्नान करेंगे, लेकिन ये सत्संग जो है, ये साधु संग है, ये आपको घर बैठे पवित्र करेगा। ये गंगा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा में जाओगे तब पवित्र होगे, लेकिन ये आपके घर में पवित्र करने का उत्तम साधन है, सत्संग और साधु का संग। सत्संग का मतलब सत्य भगवान को कहते हैं, परम सत्य, उसके संग साथ संग करने वाला, संग कराने वाला जो साधु है, वो असल में पवित्र करने का उत्तम साधन है। पवित्रम उदम उत्तमम, हाँ, प्रतीक्षा अवगमम, इधर प्रत्यक्ष आंखों के सामने आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये धर्म मरने के बाद के स्वर्ग की बात नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष अवगमम, जो इस रास्ते में चले हैं उसके जीवन में अभी इधर आप परिवर्तन देखेंगे, बुरे रास्ते से अपने आप को हटा लेंगे, गलत काम से अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है बहुत जन्मों की और बहुत सालों की आदत पड़ी है, हटाने में टाइम लगे, लेकिन प्रयास शुरू कर देंगे। प्रत्यक्ष यहां अभी इस वक्त, और ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करके प्रभुपाद ने अमेरिका में 60s में एक्सपेरिमेंट किया, घर से विद्रोह किए नौजवानों के ऊपर जो नशे में लिप्त, घर छोड़ के बड़ों का आज्ञा का उल्लंघन करके निकल चुके थे, उनके ऊपर सरेआम मार्ग उद्यान के अंदर बैठ के ये प्रयोग किया, और रिजल्ट के रूप में पूरी दुनिया को दिखाया कि उनके जीवन में परिवर्तन आया है। प्रत्यक्ष देखने को पत्रकारों को मिला, सरकार को मिला, सबको मिला, कि ये लोग जो बिगड़ के बांदर हो गए थे, परिवार से हट चुके थे, मर्यादाओं से बिल्कुल वंचित हो चुके थे, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सनातन वैदिक धर्म के प्रचार का उत्तम कार्य करके दिखाया। जो अपना कुछ नहीं कर रहे थे, अपना ही नाश कर रहे थे, और दुनिया के लिए वो इतना बड़ा काम करने में सफल हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण ये 40 साल का है, 5000 साल पुरानी बात नहीं कर रहे, प्रहलाद महाराज के जमाने की बात नहीं कर रहे, ध्रुव महाराज की बात नहीं कर रहे, अभी 70s की बात कर रहे हैं, जो हमने अपने आंखों से देखा है। प्रत्यक्ष आवागमम धर्मयम, यही धर्म है, सुसुखम, इसमें ही परम सुख है, और ये अविनाशी है। ये सत्वगुण के स्तर पे हमको लाएगा, तब हम असल में अपने को बदलेंगे, समाज बदलेगा, जब हम बदलेंगे, हमारा घर बदलेगा, तब समाज बदलेगा, तब आने वाले 10,000 साल तक स्वर्ण युग आएगा, और उस युग के वो युग हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं, तो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और नहीं तो हमारे बड़ों ने जो गलती की वो हम भोग रहे हैं, और हम जो गलतियां करके जाएंगे हमारे बच्चे भोगेंगे। अब आप हमारे हाथ में, हम क्या करना चाहते हैं। यहां वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अब फैसला आप करो, हमने आपके ऊपर छोड़ा है कि सतोगुण ठीक है, कि पशु का स्तर ठीक है, हृदय साफ करना ठीक है, कि केवल फेस साफ करना ठीक है, श्रृंगार पति के लिए करना है कि पब्लिक के लिए करना है। अब च्वाइस आपकी, प्रसन्नता भगवान की ठीक है, कि दुनिया पर हमारे काम से प्रसन्न हो या भगवान प्रसन्न हो, ये हमको
दुनिया में भी प्रसन्न हुआ नहीं आज
तक, ये च्वाइस आपकी है। हम तो सीधा सा ये भगवत गीता की शिक्षा का लास्ट वर्ड है, अर्जुन मैंने आपको विस्तार से समझाया, अब आप इसके ऊपर विचार करो, जो आपको चाहे वो करो, यत इच्छा तत् करो। विमर्शेण अशेषेण, अशेषेण का मतलब पूरे के ऊपर अच्छी तरह से विचार करना, और फिर जो तुम्हें ठीक लगे सो करो। ये भगवद गीता का चौथा, तीन पहले बताया, चौथा ये विशेष जो विशेष संदेश है, जिसे आप भी बच्चों को समझाओगे लेकिन करेगा तो वो उसकी मर्जी से आगे ना, तो ये एक नेचुरल है। तो यहां वाणी को विराम देते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है अथवा पहले केक काट लेते हैं, वो बिटिया का आज जन्मदिन है, आप सब लोग उसके लिए भगवान को प्रार्थना करें। कि सुखमय अपना परिवार में जीवन बिताए।